તારીખ 4/5/1994ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા મુંબઈમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 88
ताकत आती है तो ये स्थिर तत्व ध्रुव तत्व का श्रद्धा ज्ञान होना चाहिए। बिना श्रद्धा ज्ञान सीधे स्थिर होने की परिस्थिति परिणाम में कभी होती नहीं, इस प्रकार की क्षमता नहीं आती। ये विषय लिया है 17-18 समय सारणी मैं प्रयोग करता हूं तब मैं जायक हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा रहता है, शांति मालूम पड़ती है, विकल्प दिखते नहीं, अथवा होगा तो भी पकड़ में आता नहीं। क्या यह भूमिका यथार्थ है या मिथ्या शांति होगी, कैसे आगे बढ़ना, ये इसमें जो स्वयं को शंका हो रही है कि भूमिका यथार्थ है या नहीं है और विकल्प होगा फिर भी पकड़ में नहीं आता होगा, इस प्रकार की जो भूमिका है वो वास्तव में कोई यथार्थ नहीं है। आगे बढ़ने के लिए जो स्वाध्याय चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से, कि पहले तत्वों का भाव भाषण होना चाहिए। जब जीव तत्व का भाव भाषण होने से फिर मैं जायक हूं, मैं भगवान हूं ऐसा आता है, तो परिणाम आत्मस्वरूप के महिमा के रसपूर्वक जमने लगेगा। इसके पहले अगर ऐसा रतन करेंगे तो शायद ये रूखे परिणाम हो जाएंगे। प्रश्न, जो एक मेंढक ने किया वैसा इस जीव ने अनंत काल में अनंत बार निर्दोष द्रवलिंग धारण करके भी नहीं किया, वह कृत्य क्या? वह कृत्य वो है कि उसने मेंढक ने राग और ज्ञान से वेद ज्ञान किया, भीतर में अपना ज्ञान से ज्ञान स्वरूप का भाव भाषण होकर के भीतर में वो एकाग्र हुआ, लीन हुआ, वो कार्य उसने किया है, जबकि द्रवलिंग धारण करके वेद ज्ञान नहीं किया है, यही कारण है। द्रवलिंग धारण करके द्रवलिंग में संतुष्ट हुआ है इस वक्त, इसलिए भेद ज्ञान नहीं हुआ। जिस पुण्य परिणाम उसका निषेध होना चाहिए उसी में संतुष्ट हो गया तो उसका आदर हो गया, तो परिणाम तो उल्टा हो गया। मुमुक्षु भूमिका के योग्य वैराग्य व उपशम किस प्रकार का होता है स्पष्ट करें। मुमुक्षु की भूमिका में ऐसे कोई स्वरूप की अपूर्व जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि जिस जिज्ञासा के वशात अपने सभी प्रकार के उदय के रस ठंडे हो जाए, रस निरस हो जाए, उसी को ही मुमुक्षु की भूमिका का वैराग्य कहने में आया है। मुमुक्षु जीव का सर्वोपरि कर्तव्य क्या है? मुमुक्षु जीव का सर्वोपरि कर्तव्य अपना आत्मकल्याण का लक्ष्य करना वही है। सबसे सर्वोपरि वही कर्तव्य है, इससे बड़ा कोई कर्तव्य होता नहीं, ये सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य है। चित्त का विवेक तो वास्तव में आत्मा का विवेक है, श्री गुरुदेव से के इस वचनामृत के अर्थ गांधर्य को प्रकाशित करें। निमित्त का विवेक मैंने देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष इसके प्रति जो आदर होना चाहिए इसका आदर अगर नहीं होता है तो ये विवेक शून्यता है। यह विवेक है, विवेक नहीं है किंतु यह विवेक है। ना तो ऐसा तर्क करता है निश्चय आभासी कि ये तो निमित्त है, निमित्त के प्रति राग नहीं करना चाहिए, निमित्त के प्रति के परिणाम में राग अवश्य होता ही है, पर ऐसा राग है वो वितरागता नहीं है, वो धर्म नहीं है, इसलिए उसका कोई निषेध नहीं करता है। तो यहां पर गुरुदेव कहते हैं कि अपनी अपनी भूमिका के योग्य राग भी होना चाहिए, करना चाहिए नहीं लेकिन तो होना चाहिए। ये स्वस्थान का राग है जिसे साधक की भूमिका में भी स्वस्थान का राग नहीं आता तो उससे आभासी होता है। तो कहते हैं कि मां निमित्त का राग नहीं किया किंतु निमित्त का विवेक किया है। क्यों? तो अकेला राग मां नहीं है, मां ज्ञान भी है और ज्ञान की प्रधानता होने से ज्ञान को विवेक के रूप में बताया, राग को गिनाई नहीं और राग और ज्ञान को तो विवेक बताया, इसलिए ये विवेक है। और ये विवेक निमित्त का नहीं है किंतु आत्मा का है। क्यों आत्मा का है? कि उसके माध्यम से वो अपने आत्मस्वरूप तक पहुंचने का प्रयास करता है। वास्तव में उसका जो आशय है, इरादा है, वो तो आत्मकल्याण करने का है। इसलिए आत्मकल्याण की मुख्यता में ऐसे निमित्तों का आदर आता है तो उसको विवेक कहते हैं। और ये सिर्फ निमित्तों का विवेक नहीं है, ये आत्मा का विवेक है। गुरुदेव श्री के प्रवचन में निश्चय की प्रधानता से बहुत बात आती थी। कई लोग बिना समझे निश्चयाभाषी की तरह बोलने भी लग जाते थे। गुरुदेव को ये भी जब मालूम पड़ा कि गड़बड़ भी करते हैं कुछ लोग, तो उन्होंने निमित्त के विषय में भी उपदेश दिया, अच्छे तरह दिया था। कुछ लोग तो ऐसी अफवाहें भी फैलाते थे कि कांगे स्वामी निमित्त को मानने वाले नहीं है, निमित्त को मानते ही नहीं, ऐसे एक माहौल बना दिया था विरोधी लोगों ने। यही कांगे स्वामी का ये वचनामृत है कि निमित्त का विवेक तो आत्मा का विवेक वास्तव में है। तो ये चाहते अच्छा ऐसे भी कहते थे क्या? तो हाँ, ऐसे भी ऐसा भी कहते थे। और वो सुनिए, जो भी कहते थे वो सुनी है। स्वरूप के श्रद्धा की खुमारी में देव गुरु शास्त्र मेरा कुछ नहीं करते, ऐसा भी कहते थे। और देव गुरु शास्त्र का जो विवेक है वो आत्मा का विवेक है, वो भी कहते थे। बात तो दोनों कहते थे और दोनों सही थे, दोनों परस्पर विरुद्ध नहीं थे, लेकिन समझ में आनी चाहिए कि क्या कहां क्या कहने का आशय है वो समझ में आना चाहिए। हाँ, वो भी विवेक है, वो भी वेद ज्ञान का कारण है। जिसको वेद ज्ञान नहीं होता है वो भी गुरुदेव ने कहा है वो वेद ज्ञान का कारण है। और जो ज्ञानी है जिसको वेद ज्ञान हुआ है उसको ध्यान का कारण है, स्वरूपालंबन का कारण है, स्वरूप स्थिरता का कारण है, ऐसा भी बनता है। हाँ, परमात्मा सार में ही सब बातें आई हैं। वचनाम अगर आपको देखना हो तो मिलेगा शायद। जो लिखना हो तो लिख लो, परमागमसार में इस विषय जो वचनामृत है वो वचनामृत के नंबर है 521, 798 और 826। ये तीनों वचनामृत में वो बात आई है। 521 थोड़ा थोड़ा अपन ऊपर ऊपर से देखना तो देख लें। जैसे गुरुदेव का देह का जन्म तो हुआ था स्थानकवासी संप्रदाय में, जहां प्रतिमा की स्थापना का विरोध है आज भी और उस जमाने में भी था। यह तो सनातन स्वादवाद जैन दर्शन है, इसे जैसा है वैसा समझना चाहिए। त्रिकाली ध्रुव वस्तु है, उसकी अपेक्षा से एक समय की पूर्ण शुद्ध पर्याय को भी भले ही कहने में आती है, परंतु दूसरी बाजू वो भी है कि शुभराग आता है, शुभराग होता है, इसके निमित्त देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा के शुभराग भी यथास्थान में होते हैं। भगवान की प्रतिमा होती है उसको नहीं मानने वाले ही मिथ्या दृष्टि है, भले उससे धर्म नहीं है, उससे कोई धर्म तो नहीं, परंतु उसको जो उठापता है निषेध करता है तो मिथ्या दृष्टि है। शुभराग ही है, दुख रूप है, परंतु यह भाव होता है इसके निमित्त भगवान की प्रतिमा आदि होती है, उसका निषेध करे तो वह जैन दर्शन को नहीं समझता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि नहीं है। कितना क्लियर देखा? हाँ, क्रियाकांड तो है ये, वो क्रियाकांड तो शास्त्र स्वाध्याय भी क्रियाकांड है। हाँ, शास्त्र स्वाध्याय करना वो भी क्रियाकांड के अलावा क्या है? एक स्वरूप में जम जाता है, वही क्रियाकांड नहीं है। और तो सब जितने भी मनोवचन काय की क्रिया के परिणाम है तो परिणाम को ही कांड कहने में आता है। जी तो निष्क्रिय स्वरूप में जम गया तो उसको उस पंक्ति में हम क्यों ले जाए जिसको हम क्रियाकांड विधिगत रूप से करते हैं, इस पंक्ति में इसकी बराबरी में इसको क्यों ले जाए, क्या फायदा है इससे? हाँ, देवेंद्र कुमार जी, जिन प्रतिमा कैसी होती है वो 798 में क्या कहते हैं? अक्रिय बिंब। कैसा? अक्रिय बिंब परम प्रसन्नता से पूर्ण शांत वितराग मूर्ति निर्लोर निर्विकार मुद्रा होती है। कैसे होती है? गुरुदेव के शब्द देखो। हाँ, फिर से, जिन प्रतिमा कैसी होती है? क्योंकि गड़बड़ हुई ना, ये श्रृंगार करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं, सब गड़बड़ होती है। कि अक्रिय बिंब जैसा अपना स्वरूप अक्रिय बिंब है उसको दर्शाने वाली है, परम प्रसन्नता से पूर्ण है, ऐसी प्रसन्नता शब्दों से समझाई नहीं जाती जो जिन प्रतिमा के माध्यम से दिखाई जाती है। समझाना दिखाने में बहुत अंतर है। समझाना एक थियोरेटिकल प्रोसेस है जबकि दिखाना ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है इसका। तो ऐसी प्रसन्नता जो वितराग मुद्रा में होती है, निर्लेप शांत मुद्रा में, निर्विकार मुद्रा में होती है, तो शब्दों से नहीं दिखाई जाती, नहीं समझाई जाती जितनी प्रतिमा से दिखाई जाती है। अपना आत्मस्वरूप दिखाई देता है, उसमें आत्मस्वरूप का दर्शन होता है। वास्तव में कि मेरा स्वरूप ऐसा है बिल्कुल जैसी मूर्ति है, ऐसा मैं अमूर्तिक मूर्त रूप हूं, अमूर्तिक की मेरी मूर्ति ऐसी है। ऐसा आत्मा के असली मूल शांत अक्रिय स्वरूप देखने में आदर्श समान है। ध्यान का कारण स्वरूप, ध्यान का कारण विकराजता का स्वरूप जिसने जाना है उसे पूर्ण स्वरूप का स्मरण होने का कारण बनता है। स्मरण होने का भी कारण बनता है और आविर्भाव स्वरूप के भाव को, आत्मभाव को आविर्भाव होने का भी कारण बनता है। तीन बोल हैं। देखिए कहते हैं कि इधर मध्यलोक में कृत्रिम जिनबिंब की बात होती है, इसलिए धर्मात्मा नई प्रतिमा को बना करके उसकी स्थापना करें ऐसा नियम अनादि से है। ये कोई नई बात खड़ी नहीं हुई है। अकृत्रिम जिनबिंब तो तीन लोक में है ही, ये तो कुदरती व्यवस्था है। ये व्यवस्था तो कुदरत ने रखी है। ऐसी व्यवस्था किसी भी मूर्ति के तीन लोक में नहीं है। जिसमें जिसकी जैसे व्यवस्था विकराल जिनेन्द्र प्रतिमा की है वो व्यवस्था कुदरत ने रखी है। जी
नंबर
826। इधर मध्यलोक में कृत्रिम जिनबिंब की बात लिया है, मतलब वो अकृत्रिम है इसके सामने बात कर रहे हैं। इसलिए धर्मात्मा मैंने मिथ्या दृष्टि ने जो मोक्ष मार्ग में है जिसको स्वरूपानुभव है तो नई प्रतिमा को बना करके स्थापित करते हैं। ऐसे अनादि से इसका नियम ऐसा हो ही रहा है, चला रहा है, ऐसा निश्चित होता है। और जो शाश्वत प्रतिमा है तो किसी ने बनाई होती नहीं है, वो तो शाश्वत है, अनादि से है, किसी की बनाई हुई नहीं है। कि क्या कुदरत क्या सूचित करती है कि कुदरती अपने स्वरूप को दिखाती है। कुदरत है वो स्वरूप अनुसंधान में हमेशा हमेशा अनुकूल ही है, ऐसा लेना चाहिए। जो भी स्वयं भेद ज्ञान करता है उसे भेद ज्ञान में प्रतिमा भी निमित्त होता है, अर्थात उसके दर्शन श्रुति आदि करने से भेद ज्ञान होता है। मैं ऐसा नहीं कहा कि शुभराग होता है। देखो मैं ऐसा नहीं कहा कि दर्शन करने से शुभराग होगा, दर्शन करने से भेद ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं। एक दिव्य ध्वनि के अलावा साक्षात भगवान की तरह ही प्रतिमा जी है। जो स्वयं धर्म को प्राप्त होता है अपने पुरुषार्थ से उसको निमित्त पड़ता है। वो सूत्र भी मैं लिया है, सम्यक दर्शन का कारण है ऐसा करके। यहां प्रतिमा जी को स्व पर भेद विज्ञान में निमित्त कही है। जो भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधिकार पहले पर ये प्रवचन चल रहा है तो कहते कि यहां पर विमल जी की बात करते हैं। प्रतिमा जी को स्व पर भेद विज्ञान में निमित्त कहा है किसने, टोडरमल जी साहब ने। जो जी प्रतिमा को मानते ही नहीं उसे कहते हैं कि सम्यक दर्शन आदि में वस्त्रादि रहित वीतरादि प्रतिमा जी का निमित्त होता है और उसका अभिषेक आदि भी स्वच्छ जल के अलावा अन्य पदार्थों से नहीं होता है। ये भी स्पष्ट कर दिया है, ये गड़बड़ी चली है ना, इसलिए कि तीन जगह ये बात आई है। तो ये बात रही निमित्त का विवेक, वो आत्मा का विवेक है। इसमें आत्मानुसंधान करने का अर्थ गांभीर्य रहा है। दूसरा प्रश्न है, परम सत्संग सत्संग असत्संग और कुसंग की परिभाषा सविस्तार बतलाते हुए इनके गुण दोष पर प्रकाश डाले। परम सत्संग किसको कहते हैं? जो ज्ञानी पुरुष को पहचान करके इनके चरण सानिध्य में अपनी योग्यता को बढ़ाता है, मोक्ष मार्ग के प्रति आगे बढ़ता है, ऐसे सत्संग को परम सत्संग कहने में आया है, क्योंकि वो आत्मकल्याण का निमित्त है, इसलिए या आत्मकल्याण का प्रसंग है, इसलिए उसको परम सत्संग कहने में आया है। सत्संग वो है कि जो सत की प्राप्ति के लिए सिर्फ यही कारण से, इसी हेतु से साथ में मिलकर के सत प्राप्ति के विषय में विचार विमर्श करते हैं, अपने भावों के आदान प्रदान करते हैं, इस विषय के परामर्श करते हैं, उसको सत्संग कहने में आता है। कि जहां सत का रंग चढ़े, जिस संग से सत का रंग चढ़े, उसी को कहते हैं कि वो सत्संग है। राग द्वेष का रंग चढ़े तो सत्संग नहीं है। सत्संग ऐसा संग नहीं और दूसरा कोई भी साधारण लौकिक जनों का संग है, वो असत्संग है। चाहे वो परिवार के सदस्य भी हो, क्या जिसको सत की जिज्ञासा नहीं, सत प्राप्ति की भावना नहीं, ऐसे व्यक्ति के संग को असत्संग कहते हैं। चाहे वो कितने भी परिवार के नजदीक के सदस्य हो, पति के पत्नी हो, पत्नी का पति भी हो, लड़का हो या माँ बाप हो, भाई हो या बहन हो, बुआई हो या दामाद हो, कुछ भी हो, ये सब असत्संग में जाता है। तो फिर बाजार के संग को, व्यापारियों के संग को, समाज के संग को, आजकल लोग क्लब में जाते हैं, तो सभी संग को तो असत्संग ही कहना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ये सभी असत्संग है। हाँ, जब खुद ही कहते हैं तो संग करेंगे कौन? इसका तो संग करने का सवाल ही नहीं रहते। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि कुटुंब के मध्य में रहना पड़ता है। तो संग किसको कहा जाए? कि उस पर प्रीति हो, प्रेम हो तो संग कहा जाता है, अगर प्रेम नहीं हो तो संग नहीं कहा जाता। भले ही संयोग होता है, ये संग नहीं होता है किंतु संयोग होता है। बोलिए,
है तुम में भी हो सकता है कि नहीं?
जिसको सत का प्रेम होता है तो वो सत्संगी है, कुटुंबी नहीं है। फिर वो कुटुंबी नहीं है, वो सत्संगी है। अगर कुटुंब के सदस्यों को भी सत का रंग चढ़ता है पर सत प्राप्ति की जिज्ञासा में वो उसे ऐसी धर्म चर्चा चलती हो परिवार में, तो ये सत्संगी है, वो कुटुंबी नहीं है। तो उसको क्यों कुटुंबी कहे? उसको सत्संगी कहे। हाँ, ऐसी बात है। ये तो ऐसा नहीं है, परिवार बात तो विशेष चलता है। और सत्संग किसको कहा जाए? क्या तो जहां सत प्राप्ति का कोई प्रकार आपस की चर्चा में नहीं हो, फिर भी हमें प्रेम हो, रुचि हो, प्रीति हो, संग करने का भाव रहता हो, तो ये असत्संग का भाव है। और असत्संग का भाव जिसको होता है, उसको स्वरूप का भाव भाषण कभी होता है नहीं। क्या तो भाव भाषण में प्रतिबंधक है? कहा लिया है वो, कृपालु देव ने पत्रांक 449 में ये बात ली है कि लोक संज्ञा, ओक संज्ञा और असत्संग के तीन कारण से स्वरूप निश्चय करने वाले को तत्व ज्ञान का अभ्यास करते करते कल्पना हो जाया करती है, यानी ग्रीक में क्या होता है, कल्पना बनती है, इसका तीन कारण है। क्योंकि लोग संज्ञा के वैसे लोग को नई नई बात कल्पना करके बताता रहेगा, ओक संज्ञा में तो भान ही नहीं रहता है कि स्वरूप कैसा है, पर असत्संग की प्रीति में प्रेम में भी भाव भाषण की निर्मलता आ सकती नहीं है। तो शब्द हिंदी भाषा में उतने प्रचलित नहीं है, ओक संज्ञा मैंने क्या, तो प्रश्न उत्तर में चला था कल या परसों, ओक संज्ञा मैंने क्या कि बिना समझे जो भी क्रिया क्रियाकांड में उलझते हैं संप्रदाय के लोग, उसके लिए ये शब्द प्रयोग ज्यादा होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो संज्ञा से पूजा भक्ति सब वो कर लेते हैं, सब वो संज्ञा से करते, कुछ तत्व समझते नहीं है। तो तत्व समझने वाले तो ऐसे अपने को मानते हैं कि हम तो समझ के कुछ करते हैं, भले स्वाध्याय करते हैं लेकिन समझ के करते हैं, इसलिए हम लोग योग संज्ञा में नहीं है। किंतु भाव भाषण नहीं है वहां तक योग संज्ञा बनी रहती है। तो बौद्धिक स्तर का जो निश्चय है तो सही है ऐसा मान लेना नहीं चाहिए, भाव भाषण होना चाहिए जब योग संज्ञा निकलती है। और भाव भाषण प्रयोग के दौरान होता है, अकेला विचार के माध्यम से नहीं होता है। और कुसंग, कुसंग मैंने अवगुणी, जो दोषी होते हैं अवगुणी होते हैं फिर भी इसका संग करने की रुचि होना, तो भले अवगुणी है लेकिन है तो मेरा बेटा तो है, अवगुणी है लेकिन मेरा पिता तो है, या मित्र तो है उसमें कुछ आदत अच्छी नहीं है, वैसा है फैसा है लेकिन अपना मित्र है, या कोई भी सगे संबंधी जैसे भी हो, कुछ न कुछ हेतु वश आपने अनुकूलता या कुछ भी लौकिक कारण वश अवगुणी जीवों का संग करने की रुचि भावना, ये कुसंग की भावना है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। सबसे ज्यादा नुकसान होता है तो कुसंग से होता है, या कोई धर्म की विराधना करने वाले हो, देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष का विरोध करने वाले हो, इसके संग की रुचि रहना, इससे अपेक्षा कुछ रख करके संग करने का होना, ये कुसंग है। और शास्त्रकारों ने ये बात उतनी गंभीरता से लिखी है कि अगर कोई सर्प से काटा जाता है, जहर से मरता है, अग्नि से जलता है, पानी में डूबता है, तो एक दफे मरता है, लेकिन कुसंग से अनंत बार मरेगा। इसलिए जहर खाना अच्छा है, कुसंग करना अच्छा नहीं है, ऐसा लिया है। पानी में डूब के मर जाना अच्छा है, कुसंग करना नहीं चाहिए, इतनी गंभीरता से। जितनी सत्संग की महिमा की है उतना ही जोर से शास्त्रकारों ने कुसंग का निषेध किया है, और वो सही है। हाँ, तो कुसंग हो जाता है ना, असत्संग में कोई अवगुणी होता है तो उसका संग करने से कुसंग हो जाता है, असत्संग नहीं रहता है, नीचे की डिग्री वाला होता है। फिर असत्संग में इतने अवगुण के सवाल नहीं रहता है, वहां तो जैसे परिवार है, गुण अवगुण का सवाल नहीं, सामान्य संसारी जीव होते हैं जैसे होते हैं वैसे, सज्जन भी होते हैं उसमें, देव गुरु शास्त्र का निषेध नहीं भी करते हो, रुद्र तो विराधना करते हो, विराधना के परिणाम वाले हो, दुर्जन हो, ऐसे भी होते हैं, ऐसे दो प्रकार बनते हैं ना। इस तरह से असत्संग और कुसंग का दो भेद समझना चाहिए। हाँ, जहर खा लेना अच्छा है, कुसंग करना अच्छा नहीं है। स्वलक्ष्य से शास्त्र स्वाध्याय रहे, रहे शास्त्र स्वाध्याय ये क्या तात्पर्य है, इसका क्या तात्पर्य है, ऐसा प्रश्न है आपका है लगता है। स्वलक्ष से शास्त्र स्वाध्याय हो ऐसा है, क्या शब्द लिखा है, एक ही शब्द मिलता है इसे क्या तात्पर्य है। हाँ, इस बात में क्या तात्पर्य है कि स्वलक्ष्य से मैंने आत्मकल्याण के लक्ष्य से ही शास्त्र स्वाध्याय हो और शास्त्र स्वाध्याय में भी स्वरूप लक्ष्य का ही भीतर में आशय हो, इस प्रकार से जो शास्त्र स्वाध्याय है तो ये शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति यथार्थ है। इसको छोड़ करके लक्ष्य दूसरा हो तो ये परलक्ष्य में जाता है और ये शास्त्र स्वाध्याय यथार्थ रूप में नहीं होगा, यथार्थ हो जाएगा इससे आत्मकल्याण होने वाला नहीं है। बाहुबली जी ने 12 साल तप किया तो भी तप का फल नहीं आया, भरत जी ने मुनि दीक्षा अंगीकार किया तो अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, तो बाहुबली जी के तप में कोई दोष था, ऐसा क्या प्रयोजन है अपने को, बाहुबली जी के तप में दोष देखने का हमें प्रश्न उठता है, इसमें हमारा क्या प्रयोजन है। ऐसे फालतू के प्रश्न हमें उठने भी नहीं चाहिए। अब देखिए प्रश्न ऐसे आएंगे तो हम जवाब भी ऐसे ही देंगे, ऐसा मत समझिए कि कोई हमारे सरलता का दुरुपयोग भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। मेहरबानी करके अप्रयोजनभूत प्रश्न मत करें, अपने प्रयोजन के ही प्रश्न करें। और इस विषय का सिद्धांत ऐसा है कि मुमुक्षु जीव को ज्ञानी के या मुनि के किसी भी मोक्ष मार्गी धर्मात्मा के चारित्र के दोष की आलोचना करना ये महान स्वच्छंद है, दर्शन मोक्ष की तीव्र वृद्धि करने वाले परिणाम है, तो इससे बचना, ऐसे प्रश्न में उलझना नहीं है हमें, इसलिए इसका उत्तर हम देंगे भी नहीं। ये सब तपने तो आओ, आप तप की भूमिका में आओ फिर पूछना, तब तो सम्यक दर्शन का ठिकाना है नहीं, मनुष्यों का ठिकाना है नहीं और तप का प्रश्न उठता है हमको। हाँ छोड़ो इस बात को, सर्वार्थ सिद्धि के लिए 33 सागर धर्म चर्चा करते हैं, सम्यक दृष्टि है, एक भाव करके मोक्ष जाने वाले हैं, तो भी पंचम गुण स्थान क्यों नहीं आता, अच्छा वो भी चिंता जरूरी है क्या। हाँ, इसकी चिंता हम करके क्या करेंगे, तो प्रसाद विषय की चीज है, सहज होती है, चलो इनको इसकी चिंता इतनी नहीं है, हमें क्यों। 5 लब्धि का सविस्तार स्वरूप समझाना, विस्तार तो मुझे ही नहीं आता है लब्धि का, लेकिन ये 5 प्रकार की योग्यता का विषय है, जहां भी प्रश्नोत्तर माला में सिद्धांत प्रवेशिका में हो समझ लेना, इतना भेद प्रमेय तो मेरे दिमाग में रहता भी नहीं है तो मैं क्या समझाऊंगा, एक योग्यता का विषय है, भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता अगर ठीक होती है तो ये जीव सम्यक दर्शन से के कारण विषय में कुछ समीपता को प्राप्त करता है, लेकिन 4 लब्धि तो अनंत बार हो चुकी है, इससे कोई मतलब नहीं है। भेद प्रभेद के प्रश्न पूछेंगे तो मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे भेद प्रभेद की स्मृति नहीं रहती है, कृपया वो ध्यान में रख करके प्रश्न करें, इसलिए शायद आपको अपेक्षित उत्तर नहीं भी मिल सकेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है लेकिन स्मरण का बोझा मैं उठा सकता नहीं हूं कि सबको दिमाग में रख करके।
ये तो सहज अपना स्वाध्याय करते करते ये सब चलता है। विनय मिथ्यात् किसको कहते हैं? विनय मिथ्यात् है वो विनय करने योग्य नहीं है, इसका विनय किया जाता है, उसको विनय मिथ्यात् कहने में आता है। जैसे कुलीवादी हो, कुलीवादी हो, कुशास्त्र हो, कुगुरु हो, वो जो अनायतन कहे हैं, इसका विनय करते हैं, लोक लज्जा से करते हैं, किसी भी अपेक्षा के से कारण से करते हैं, तो उसको विनय मिथ्यात् कहने में आता है। तत्व निर्णय में निर्विकल्प दशा पहले जो निज तत्व के विकल्प आते हैं उसमें जलन है, यह तो बराबर कारण कि वह चारित्र गुण के विपरीत पर्याय है, परंतु उसके साथ ज्ञान गुण का क्या कार्य है, श्रद्धा गुण का क्या कार्य है, वीर गुण का क्या कार्य है, ये सब गुण के कार्य को भी क्या जलन कह सकते हैं? प्रश्न है कि तत्व निर्णय में निर्णय होने के बाद जो निर्विकल्प दशा के पहले विकल्प जो है उसको ही जलन कहते हैं, ज्ञान को नहीं कहते, और जो पुरुषार्थ सन्मुखता का चलता है उसका भी निषेध नहीं है, और श्रद्धा में तो अभी विपरीतता है, सम्यक नहीं हुआ है, निर्विकल्प नहीं हुआ है, तो मिथ्यात् मंद हो गया है, कमजोर हो गया है, उपशम होने के योग्य हो गया है, ऐसा इसका कार्य चलता है। तो अलग अलग उनके जो भी कार्य जैसे हो ऐसे समझे। कर विचार तो पाम, कृपालुदय का वचनामृत का है का भाव समझाइए। कर विचार तो पाम में भाव भाषण होता है, हाँ अभिप्राय तो वही है, विचार मैंने सिर्फ विकल्प उतना ही नहीं लेना है, प्रयोग को भी विचार दशा में होते हैं, इसीलिए उसको विचार भी कहने में आता है। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में आत्मसिद्धि में इसका अच्छा विस्तार किया है, सिर्फ विकल्प को ही ना आधार लिया नहीं जाना चाहिए। प्रश्न तो बहुत है, कल के समय में पेंडिंग रखेंगे, आज तो अपना स्वाध्याय का समय पूरा होता है, सवा पाँच का ख्याल आएगा और आगे बढ़ सकेंगे, यह खूब मार्मिक बात है, कृपया परिणाम के अवलोकन करते करते उसमें ही संतुष्ट न हो जाए, पर्याय बुद्धि न हो जाए। इसलिए क्या ख्याल रखना चाहिए कि जो परिणाम का अवलोकन करना है वो तो पूर्णता के लक्ष्य पूर्वक करना है, ये इसकी पूर्व भूमिका है। जिसको पूर्णता का लक्ष्य होता है ऐसे जीव को अपने परिणाम में कितना भी सुधार होता है उस पर वजन नहीं आता, क्योंकि उसको पूर्णता चाहिए, तो उसको तो जितना भी सुधार हुआ हो वो अनंत में भाग में दिखेगा, तो उसका संतोष आने का अवसर वहां नहीं है। इसलिए लक्ष्य पूर्वक, पूर्णता के लक्ष्य पूर्वक अवलोकन होता है, वही सही होता है, इसके पहले अगर कोई होता है तो उसमें गड़बड़ होने का चांस होता है। द्रव्य का आश्रय से ही धर्म की शुरुआत होती है, तो उस बात को ऊपर की बात से किस प्रकार से मेल खाता है यह समझाइए। धर्म की शुरुआत चतुर्थ गुण स्थान से ही होती है, यानी पूर्ण द्रव्य के आश्रय से ही होती है, यह बात सही है। यहाँ मुमुक्षुता के शुरुआत की बात चल रही है, जो मोक्ष मार्ग के शुरुआत की बात नहीं चल रही है। मुमुक्षुता का प्रारंभ कहाँ से होता है और ये ज्ञान दशा का प्रारंभ कहाँ से होता है, दो बात अलग अलग है। तो मुमुक्षुता का प्रारंभ पूर्णता के लक्ष्य से होता है और धर्म का प्रारंभ पूर्ण द्रव्य के आश्रय से होता है, आश्रय को भी लक्ष्य कहने में आता है। दोनों जगह लक्ष्य शब्द का प्रयोग हो सकता है, होता भी है, लेकिन पहले वाले में आश्रय का अभिप्राय नहीं है, साध्य दशा आदर्श ध्येय उतना वहां आश्रय लेना है, और स्वद्रव का लक्ष्य में आश्रय का आशय लेना है। दोनों जगह अलग अलग आशय है, ऐसा आशय का जितना भी अंतर है उसको समझना चाहिए। सुबह के प्रवचन में निमित नैमित आई थी, ध्रुव निमित और निर्मल परिणाम नैमित, ऐसा समझना है कि क्या ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो दो पदार्थ के बीच में भी होता है, दो पर्याय के बीच में भी होता है, दो गुण के बीच में भी होता है, और द्रव पर्याय के बीच में भी होता है, गुण पर्याय के बीच में भी होता है। जहां जो प्रकरण चलता है वहां समझ लेना चाहिए। और प्रश्न तो रहे बच जाएगा, कर लेंगे।
ज्ञान मैंने मेरा अस्तित्व की समाप्ति कहां तक है, मेरा कार्य क्षेत्र कितना है, और मेरे से भिन्न भिन्न पदार्थ कौन से हैं, उसका अवश्य ज्ञान होना चाहिए। और यदि आपापर का ऐसा ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें। देखिए, ज्ञान करने में पहचाने बिना ज्ञान नहीं होता। क्या कहते हैं कि अपने को पहचाने बिना आपापर का ज्ञान नहीं होता और अपना दुख भी दूर नहीं होता। तो अपने को पहचानना यही आपापर का ज्ञान करने का सही उपाय है। पहचानना कैसे होता है ये प्रश्न यहां अवश्य हो सकता है कि हम पहचाने कैसे अपने आप को। पहचानने के विषय में कौन सी ऐसी प्रक्रिया है कि जिससे पहचान होती है, ये ना प्रश्न बिल्कुल प्रयोजन है। कोई व्यक्ति हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी चीज हो, कोई भी भाव हो, पहचानने की प्रक्रिया एक ही प्रकार की होती है, इसमें दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वो प्रक्रिया ऐसी है कि परिचय करना, परिचय किए बिना किसी की पहचान नहीं होती, चाहे सोना हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे लोहा हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे किसी पदार्थ का किसी भाव हो, उसकी पहचान उसके परिचय के बिना नहीं हो सकती। ये अनुभव गोचर है सबों को। तो आत्मा की पहचान करने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए अपना परिचय अपनों अपने को होना चाहिए। तो देखो क्या ट्रेजेडी है हमारी, हम सारे जगत को पहचान करने के लिए तो बुद्धि लगाते हैं
पर अपना परिचय नहीं करते। आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का परिचय होना एक कृपा उदय का वचना करते हैं। आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का परिचय होना, बात तो बहुत सुंदर है, फिर ये प्रश्न यहां खड़ा होता है कि आत्मा का परिचय कैसे हो। तुम्हें एक एक बात के गहराई में वहां तक जाना है कि उसका तलवा जहां तक हाथ में नहीं आए वहां तक जाना चाहिए।
नीचे जाकर के बॉटम तक चले जाना चाहिए पूरा पूरा। तो वो आत्मा का परिचय होना है, तो आत्मभावों से आत्मा का परिचय होता है, दूसरे से आत्मा का परिचय नहीं होता है। अनादि से जीव की दृष्टि ही पर ऊपर है, अन्य ऊपर है, इसलिए वो स्वयं का परिचय करता नहीं है, करने का प्रयास भी नहीं है, अरे करने की सूझ भी नहीं है कि मुझे मेरा परिचय करना चाहिए। अगर ज्ञानी कहते हैं कि तुम तेरा परिचय करो, तो भी वो परिचय करने के लिए इसको फुर्सत नहीं मिलती, उतना बाह्य सहयोग की चिंता में उतना वो आसक्त है, लगा रहता है कि अपना परिचय करने के लिए फुर्सत भी नहीं मिलती, यानी उतनी दरकार नहीं हुई। इसका मतलब कि अपना हित भाषित हुआ नहीं है। यहां तो ऐसे जीव को लिया है कि जिसको अपना हित करना है, ऐसे जीव को लिया है, तो उसको कहते हैं कि तुम अपना परिचय करो, अपना परिचय करो। अपने भावों से परिचय करने में अपने भावों में क्या क्या अनुभव होता है, अनुभव में आने वाले हमारे परिणाम हैं, हमारे भाव हैं, इसमें हमें क्या अनुभव हो रहा है, इसका हम हमारे भावों के अनुभव का परिचय करते रहें, तो उसमें से पहचान होने का अवसर आएगा। उसी को हम अवलोकन भी कहते हैं कि हमारे भावों का अवलोकन करो, अवलोकन करो, मेरे भावों का अनुभव को समझो, देखो क्या क्या अनुभव, क्या किस कारण से हो रहा है। तो उसके बहुत से पहलू समझने में आता है, उतना ही प्रकरण यहां तक खोलेंगे कि अगर हम हमारे भावों को परिचय करने जाएंगे तो हमारे परिणाम में क्या क्या हो रहा है, उसके बहुत से पहलू और उसकी बहुत सी खूबियां, बहुत सी सूक्ष्मताएं हमें नजर आएगी, उसका विस्तार बहुत है। और ये परिचय करके या ऐसा अवलोकन करके समझने की चीज है, इसके पहले सिर्फ सुनने से इसकी जिज्ञासा शांत नहीं करनी चाहिए, कुछ नुकसान का इसमें जोखिम भी है, इसलिए इस प्रकरण को यहां पर नहीं खोलेंगे। किंतु अगर ऐसा हुआ, अपना प्रभावों के परिचय में अवलोकन से कोई जाता है तो उसको क्या होगा आगे जाकर के, कि उसको अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के जो भी परिणाम होते हैं, उस परिणाम के उनकी जाति की पहचान होगी और हमारा प्रयोजन भी पहचान यहां पर, इसी वो प्रक्रिया में जाते हैं। जीव के परिणाम में जाति की अपेक्षा से विचार किया जाए तो दूर जाति के परिणाम है, जो विभाव जाति के परिणाम है इसमें विविधता बहुत है, विविध प्रकार के विभाव होने पर भी जाति इसकी एक है, जाति दो नहीं है। और इसके जो चिन्ह है वो ऐसे हैं कि एक तो इसमें दुख है, विभाव में क्या है, आकुलता है, दुख है और मलिनता भी है, ये गंदे परिणाम है। और हमारे से विपरीत है, हमारी जाति के, जाति से वो विपरीत जाति वाले हैं, उल्टी जाति वाले हैं, प्रतिपक्ष के जाति वाले हैं। ये बात फरमाई समय सार के कर्ता कर्म अधिकार की बहुत से गाथा है। अशुचिपनो विपरीत चाहे आश्रमो ना जाने ने वही जाने ने दुख कारणों ये थी निवर्तन जीवत रहे महतर का था। तो अशुचि अशुचि मैंने अपवित्रता गंदगी की मलिन परिणाम है, स्वयं दुख रूप है और अपने स्वरूप से विरुद्ध जाते वाला परिणाम है, प्रतिपक्ष वाला परिणाम है। तो दूसरे जाति के वो परिणाम है, वो स्वभाव जाति के हैं, वो ज्ञान रूप है, चैतन्य रूप है, पवित्र है, मातुल सुख रूप है और अपने आप से स्वभाव रूप होने से अविपरीत है। विपरीत का प्रतिपक्ष क्या है? अविपरीत है। ऐसे स्वभाव और विभाव की जाति पहचानने में आएगी, यही आपापर का ज्ञान है। उसी को ही, इसी पहचान को ही स्वपर का ज्ञान कहने में आया है। ऐसे लक्षण भेद से स्वता और पर का ज्ञान पहचान नहीं हुई तो जीव तत्व की श्रद्धा नहीं होगी। पहले तो जीव तत्व का श्रद्धान करना है, पहचान पूर्वक, भाव भाषण पूर्वक। कहते हैं कि अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें, अथवा आपा पर को एक जान करके अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करें तो अपना दुख दूर कैसे हो, ये कार्य पद्धति की विपरीतता है। कि आपा पर को एक जानता है, स्व पर को एक जानता है, देह और आत्मा को एक जानता है। शरीर की असाता की पर्याय से हमें दुख होता है ऐसा लगता है, क्या सही है? असाता से दुख होता है ये बात कितना परसेंट में सच्य है? कि एक भी परसेंट में वो बात सच्ची नहीं है, नितांत दुख है। क्यों? ऐसा मानने पर तो, ऐसे सिद्धांत से तो हम इलाज भी इसका ही करता है, करते हैं। क्या, किसका इलाज करते हैं? कि बीमारी को हटाओ, बीमारी को दूर करो तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। पर ऐसा अनुभव भी करता है, देखो विकृतता कहां तक आगे बढ़ती है। बीमारी हुई, दुख हुआ, बीमारी मिट गई, हमारा दुख मानो मिट गया। दुख मिटाए क्या? नहीं मिटा है। ये बीमारी से हमें दुख हो रहा है, यही बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी तो यही है विपरीत प्रधान की। हमारी अज्ञान और मिथ्यात्व की बीमारी तो मिटाने का हम उपचार करते नहीं, पर शरीर का उपचार करते हैं। यही कहा आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करें। किसका उपचार करते हैं? पर का उपचार करते हैं। तो अपना दुख दूर कैसे हो? आग लगा है चेहरे पे, दर्पण में दिखता है और दर्पण पे जो दाग दिखता है वहीं घिसने लगे। कहां दिखा? कि दर्पण में दिखा। क्या दर्पण में है या चेहरे पे है? तो दर्पण को ये दाग कभी दूर होने वाला नहीं है। ये हालत हो गई। समस्या है सारे जगत में, तो समस्या है कि दुख का कारण क्या, सुख का कारण क्या। ये पाश्चात्य देशों में, अमेरिका वगैरह में, यूरोप में ऐसे समृद्ध देश है, स्विट्जरलैंड वगैरह में, तो उतनी संपन्नता है और उतना ऑटोमाइजेशन हुआ है। कि उतने संबंध होने में भी जीव को कहीं चैन नहीं है, बहुत वैसे ही बढ़ जाती है वहां। क्या कारण है कि दुख दूर करने के लिए पर का उपचार किया? क्या किया? पर का उपचार किया, वो साधन जुटाए, वो साधन जुटाए, वो साधन जुटाए। जरूरत बढ़ाते गया, जितनी जरूरत बढ़ाई उतना ही दुख बढ़ा, उतनी आतुरता बढ़ी। तो पता नहीं चलता है कि कैसे होता है। फिर खाओ गोली, बेचैनी हुई तो बेचैनी दूर करने के लिए गोली खाओ और नहीं बढ़ेगी। एक खाने से नहीं गई, दो दो खाओ, दो दो खाने से नहीं गई, तीन तीन खाओ, तो फिर बोलेगा कब ज्यादा मन बढ़ाना, लोग तो शांत हो जाएंगे। तीन से ज्यादा लिया तो बात खत्म है। तो ये कोई सही इलाज नहीं है, वो पर का उपचार है, स्वयं का उपचार है ही नहीं। दृष्टांत तो इसलिए दिया कि ये बात आज के जमाने में सिद्ध करने की नहीं हुई कि सर्व प्रकार की संपन्नता होने से सुखी हो जाते हैं, वो बात आज सिद्ध करने की नहीं हुई। अथवा अपने से पर भिन्न है, परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। देखो, ये निदान किया, दुख होने का निदान किया। क्यों होता है कि अपने से पर भिन्न है, देहादेश से लेकर सभी प्रकार के संयोग, परंतु यह पर में अहंकार या ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। बेचैनी होने का यही कारण है, यही वैज्ञानिक कारण है। वीतराग विज्ञान में दुख का यही कारण, सुख का यही कारण, ये साफ साफ बताया गया है। कैसे? तो बहुत आसानी से समझ में आए की बात है कि आशांति और आत्म सुख ये तो जीव का स्वरूप है। इसकी उपासना नहीं करके, जहां सुख शांति नहीं है इसकी उपासना करे सुख पाने के लिए, तो बालों में से तेल निकाल श्रम कर लिया, क्या नतीजा आया? आतुरता बढ़ी। बालों में तेल छाली, रेत में तेल होता नहीं, बहुत परिश्रम करके उसको पीसा, जैसे कल को तीन को पीसते हैं तो तेल निकलता है, उसको भी पीसने लगे तो बिहार तो इतना ही दाना है, किसी कलर का है। परिश्रम करने से आतुरता के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे सुख शांति से भरा हुआ पदार्थ खुद ही स्वयं है अंतर में, उसमें अंतर्मुख होकर के उसकी उपासना करके सुख शांति की उपलब्धि करने के बजाय इधर खिंचाव होता है कि यहां से सुख मिलेगा, यहां से सुख मिलेगा, यहां से ले लूं मैं, ये मेरी चीज है, इससे भोग भोग से कैसे भी कल्पना करके सुख करने का परिणाम का परिश्रम स्वयं आत्मता का उत्पादक हो जाता है। बेचैनी का कारण है, खास करके यहां भी अपने को नजर आएगा कि जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी अनुकूलताएं बढ़ाने के लिए व्यवसाय आदि के माध्यम से बहुत परिश्रम किया हो, बहुत विकल्प किए हो, बहुत छोटे परिणाम किए हो, छोटे धंधे किए हो, सब प्रकार के स्वास्थ्य का बहुत गड़बड़ी है उसमें, और फिर इसी कारण से नहीं लेकिन पूर्वपुरी के कारण से बाह्य संपन्न परिस्थिति हो गई है, गड़बड़ करने से नहीं, ये तो पाप के परिणाम से वो भोगने पड़ेंगे अगले भाव में, लेकिन पूर्वपुरी के कारण से हो जाते हैं। परिस्थिति ये बनती है, हमारे गुजराती में कहते हैं साठे बुद्धि नाठी, साठ साल होता है बुद्धि बिगड़ने लगती है, परिणाम और आकलित होने लगे। पहले जब गल पर सोता था नींद आ जाते थे। अब पच्चीस चोरों के सवामन के तलाई पर सोता है, नींद नहीं आती है, क्या कारण है? अगर तलाई तो इसलिए नहीं कि पुलिस में से कोई नींद अच्छी तरह आ जाए और हम सके हो जाए, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। क्यों? कि यहां से सुख मिलेगा और इस सुख लेने के लिए मैं यहां सो रहा हूं, यही दुख का कारण है, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं है। तो उसमें अहंकार ममकार अपनत्व करना, ये मेरी संपत्ति है, यही बचाने का कारण है, दूसरा कोई बचाने का कारण। जितना रस अपनत्व का तीव्र होगा उतनी आकुलता बढ़ेगी। चीज तो चीज के ठिकाने पर है, न इसको कुछ हिलानी है, न इसको कुछ स्पष्ट करने की जरूरत है, और न इसका त्याग करने की भी जरूरत है, न ग्रहण करने की भी जरूरत है। जो भी फेरफार करना है वो भीतर में करना है पहले, फिर बाद में स्वयं हो जाता है। तो वृत्ति विकल्पी नहीं चलता है तो प्रवृत्ति नहीं होती है। कहते हैं कि तन में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है, यही दुख का होने का निदान है। तो क्या हम हमारे संयोग में अपनापन नहीं करेगा तो कैसे बन सकता है? क्या हम हमारे बेटे को बेटा नहीं माने, हमारे परिवार को हमारा परिवार नहीं माने, नहीं जाने, क्या करें? तो उसको पराये के रूप में हम कैसे देखें? सवाल तो है, जो पराया नहीं गिना जाता है और माना भी नहीं जाता है, उसको पराया जाने कैसे और माने भी कैसे, ये सवाल अवश्य उठता है। तो कहते हैं कि देखो अपने आप में, अपना अस्तित्व तो है नहीं वहां, फिर अपने तो है होता है कैसे? एक अपना है ऐसी कल्पना उठती है, एक पूर्वग्रह बना रखा है, मिसकंसेप्ट खोटा निश्चय दुखा निश्चय बना रखा है कि ये सब मेरे हैं, मेरे अधिकार में है। हम अपने अधिकार में एक परमाणु भी नहीं है, जीव तो नहीं है, एक परमाणु भी नहीं है, ये तो रोजाना रोज होता है। जो फिर अपना माना जाता है, गिना जाता है, इस पर भी हमारा अधिकार तो नहीं रहा। एक सेकंड में चक्कर खाके पड़ता है या नहीं पड़ता है, पढ़ना चाहता है क्या? हा? कुछ सावधान हो उसके पहले तो गिर जाता है, पर गिरने के बाद में तो पता चल रहा है कि मैं गिर गया, या तो कहीं कई दफे गिरने के बाद कितना समय चला जाता है पता नहीं चलता है कि मैं गिरा कि नहीं गिरा। क्यों? कभी कभी होता है तो क्यों होता है, पर कभी होता है तो ठीक है, जाने दे इसको, ऐसे करते हैं चलाते हैं, ये तो कभी होने वाला है, इस पर इसकी चिंता नहीं करनी है, नहीं करनी है। हमें दुख एक क्षण के लिए भी थोड़ा भी नहीं चाहिए, ये अभिप्राय है। सिद्ध तो उतना ही करना है, कभी होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, कितना होता है, वो सवाल नहीं है। अधिकार है उतना ही सिद्ध करना है कि हमारा अधिकार नहीं है। जब हमारे कहलाने जाने वाले शरीर पे हमारा अधिकार नहीं, तो फिर अन्य पदार्थ पर हमारा अधिकार है, तो बात कितनी धोखा वाली है, कितना बड़ा धोखा है इसमें। उसी ही दुख आ रहा है कि जहां हमारा अस्तित्व नहीं, जहां हमारी मौजूदगी नहीं, जहां हमारी सत्ता नहीं, उस पर हम सत्ता रखना चाहते हैं, हमारी सत्ता चलाना
चाहते हैं यही आतुलता और दुख का कारण है। तो दुख आपातर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है, ये इसका इलाज है कि अपना ज्ञान करे पहचान करके। पर भिन्न है वो स्वयं में ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि पर से अभिनय कर ली रही और इनको भिन्न जाना तो पर की अभिन्नता नहीं रही, आपातर का भिन्न ज्ञान हो गया। ऐसे आपातर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है तथा आपातर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है। जीव मैंने अपने आप, जीव मैंने कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। जीव का विचार अपने को शामिल करके सम्मिलित करके करना है, वरना कोई दूसरा पदार्थ हम विचार करें करते हैं ऐसी बात हो जाएगी। आपा पर का ज्ञान जीव जीव का ज्ञान होने पर ही होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव है। हम कौन है? आप स्वयं जीव है, बार बार बुलाते हैं जो क्लास में बैठते हैं उनको बुलाते, कौन हो तुम? मैं जीव हूं, मैं जीव हूं और मैं शरीर नहीं हूं। बच्चे को बताते हैं बचपन से संस्कार डालने का है ना। अब तो अगर ऐसा परिणाम नहीं है तो हर हालत में बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे से भी गए होते हैं। क्योंकि आप स्वयं जीव है, शरीरादिक अजीव है। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी ओर पर की भिन्नता भाषी हो। क्या कहा? तो ज्ञान में पहचान वाली बात देते हैं, पहचान को या भाव भाषण को या ज्ञान में लगना कहो, एक ही बात है। लगना एक असर है जीव के परिणाम पर के। बिना लगे मैं जीव हूं, ये शरीर आदि अजीव है, ये विचार है, तो विचार में विचार है, लगना नहीं है तो ये ज्ञान ठीक नहीं है। क्योंकि लगने की चीज को लगे नहीं रखे, खाने की चीज को बाद में ले लिया, देखने में ले लिया, सुनने में ले लिया, ऐसी बात जाएगी। यदि लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो, ज्ञान करने में पहले पहचान वाली बात लेते हैं, तो अपनी और पर की भिन्नता भाषित होती है। भाषित होती है तो लगने लगता है कि मैं शरीर से भिन्न हूं, ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे विचार में आता है तो बात नहीं, ऐसा मुझे लगता है तो पहचान है, नहीं लगता है तो पहचान नहीं है। अब अपने आप में उसका परीक्षा करके, अपने अनुभव को देख करके पता लगाना कि हमको अब जीव का और जीव का भिन्न भिन्न ज्ञान है कि नहीं है। क्योंकि गुरु की कृपा से ये सब शास्त्र को पढ़ने में आए, पढ़ने में आए तो बात तो समझ में आ गई। हम कहते हैं कि वो शरीर से जड़ से उपजल से जीव भिन्न है, ये बात तो बहुत हमारे लिए आसान है क्या? लेकिन असाता होती है तो वो बात आसान है वो कहां चली गई, पता चलता नहीं है। तो ये बात विचार में रखी थी, विचार में रख करके सम्मत भी कही थी कि बात तो सही है, हमको ऐसा ही सच्चा लगता है, लेकिन भाव भाषण या पहचान नहीं होता है स्पष्ट अनुभवांश से, तो
होने वाली बात होती है, मिलता नहीं। तो मिलता नहीं तो जाना और नहीं जाना उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। क्यों? कि असाता के काल में दुख भोग लेगा, असाता का असाता से दुख होता है, ऐसा परिणाम आ ही जाएगा, इससे दुख का उद्भव हो ही जाएगा। और दुख से छुटने का जो प्रयोजन है, वो प्रयोजन में वो विचार और ये जानकारी काम में आएगी नहीं। लेकिन विचार करके हम उसका बहुत विचार करके दृढ़ कर ले तो चलाया था ना प्रश्न, गाया था कि मैं ज्ञायक हूं ऐसा हम बहुत जोर देकर करके दृढ़ करें गैर भाव को, तो बिना भाव भाषण ये सही है क्या कार्य पद्धति, ऐसा एक प्रश्न आया था बोलते कल। प्रश्न तो प्रश्न करने वाले ने वहां से कि इसमें ग्रहित मिथ्या तो है या नहीं है, कि है, क्योंकि ये जोर ज्ञायक पर नहीं जाता है इस वक्त। इस वक्त जोर जाता है ज्ञायक के विकल्प पर जोर जाता है, क्योंकि भाव भाषण हुआ नहीं ज्ञायक का। ज्ञायक कैसा है ऐसा लगा तो नहीं, मैं ज्ञायक हूं ऐसा लगा तो नहीं, लेकिन ज्ञायक का विकल्प हूं, विकल्प जो हुआ इस विकल्प रूप में हूं ऐसा लगा है वहां पर, उस पर जोर जाता है। हाँ, वो कल्पना पर जोर खड़ी किया मजबूत कर लिया, खड़ी करके मजबूत कर लिया, घोंट घोंट करके, रतन कर करके, चिंतन कर करके, मनन कर करके उसको मजबूत कर लिया। समझने वाले को है बात, तो अगर सही समझ में आए तो ठीक बात है। अगर विकल्प निर्विकल्प का साधन है, पहले तो हमारा ये प्रश्न है, ये बताइए आप, जो तो का आपका प्रवचन है सिद्ध करना पड़ेगा, घोषणा की है इधर। विकल्प से निर्विकल्प हो सकते हैं, खून से लोह से लोह का दाग जाता है,
अंतिम विकल्प खुद तो होगा
है,
अंतिम विकल्प,
लेकिन इससे काम होता है क्या निर्विकल्पता का प्रश्न हमारा वो है। अंतिम विकल्प तो निर्विकल्प पहले होता ही है, क्योंकि वो तो ये दशा है, इस दशा में तो जीव खड़ा है, फिर काम इससे होता है क्या है? आप ये अवश्य समझो कि जो निर्विकल्प होता है उसको अंतिम क्षण तक विकल्प होता है, ये बात आपकी सही है, मैं इसके साथ असहमत नहीं। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि आपने इस वक्त अकेले विकल्प को क्यों देखा, दूसरी चुनाव से उसको क्यों नहीं देखा, क्या था साथ में बताइए पदम चंद्र। हाँ, तो उस वक्त क्या था कि जो निर्विकल्पता का कारण होगा, वो नहीं था और क्या था, वो तो मैं वो तो नास्ते नहीं, अवस्थे क्या था, स्वभाव का लक्ष्य था, निर्विकल्प स्वरूप का लक्ष्य था, निर्विकल्प स्वरूप का भाव भाषण था, निर्विकल्प स्वरूप का निश्चय था, और निश्चय के उपरांत निश्चित बल था जिसको प्रसाद कहते हैं, इस प्रसाद से सिद्धि हुई है, विकल्प से सिद्धि नहीं हुई है। अगर विकल्प से काम होता तो विकल्प बढ़ जाता है, विकल्प मरता नहीं, लेकिन विकल्प तो मरता है, और प्रसाद ज्यादा सतर्क होकर के जिंदा होता है, ज्ञान ज्यादा सतर्क होकर के संज्ञा ज्ञान रूप परिणमन कर लेता है। लेकिन हमारी दृष्टि विकल्प पर है तो हम अकेले विकल्प को ही देखते हैं, दूसरी चीज को देख सकते नहीं है, पर लगता है कि विकल्प से काम होता है, इसलिए विकल्प किए जाओ, विकल्प किए जाओ, पर विकल्प किए जाओ क्या, लेकिन नहीं भ्रांति क्या कि दृष्टि का जोर लिखा लगाओ, हाँ दृष्टि आई कहां से, हुई नहीं है, उल्टी पड़ी है, उल्टी का जोर लगाना है, उल्टी दिशा में जाएगा ये योग। दृष्टि तो उल्टी होगी अनुभव के काल में, इसके पहले तो उल्टी में जोर लगा होता है, जोर लगा उल्टी दिशा में जाएगा। द्रव दृष्टि समय दृष्टि होता है, लेकिन द्रव दृष्टि तो हुई नहीं, इसका क्या करें? पर्याय दृष्टि तो रहा है, उसमें जोर कहां लगाना है? ऐसे काम होता नहीं है। हमने एक प्रश्न कल भी किया था कि गुरुदेव ने कहा कि मैं परमात्मा हूं, ऐसा निश्चय करो। हाँ, तो गुरुदेव ने ऐसा थोड़ा कहा था कि बिना भाव वासन में परमात्मा हूं ऐसा रचन करो, ऐसा कहा था? हाँ, ऐसा कहा था। उत्तर तो निकला था कि भाव वासन के साथ परमात्मा हूं ऐसा करो, तो ऐसा लिखा नहीं है। तो ऐसा नहीं लिखा तो ऐसा भी क्या लिखा है कि बिना भाव वासन परमात्मा हूं परमात्मा हम करते जाओ, ऐसा ऐसा कहा था क्या? जब ऐसा भी नहीं कहा और ऐसा भी नहीं कहा तो आप क्या बात पसंद करते हो? बात तो दोनों अध्याय है। हाँ,
करो ऐसा कहा बातों बातों तो आ गई
ना, निश्चय में भाव भाषण आई गया। हाँ, निश्चय में तो भाव भाषण आता है, तो निश्चय में भाव भाषण है, वो बात क्यों हमारी समझ में नहीं आती है? ये जो रतन आदि का कि आदत पड़ गई है,
वहां पर्याय के लिए हमें सोचना नहीं है, परमात्मा के लिए सोचना है।
क्यों सोचना क्यों फिर? जब पर्याय के लिए तो सोचना भी क्यों? तो सोचना पर्याय नहीं है क्या? कहां जाओगे? कोई जगह है कहीं इधर उधर होने की जगह ही नहीं है, तो गड़बड़ी बहुत होती है। क्या कहते हैं कि योगी लक्षणादि द्वारा जीव अजीव की पहचान हो तो अपनी और परस्पर भिन्नता भाषित हो, भाषित हो इसलिए जीवन को जानना, इसलिए जीवन को जानना है, भाषित हो ऐसे ही जान लेना है, विचार मात्र से समझ मात्र से ऐसी बात नहीं है। अथवा जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन पदार्थों के अन्यथा सिद्धांत से दुख होता था, जीव अजीव का ज्ञान होने पर जिन जिन पदार्थों के अन्यथा मैंने विपरीत श्रद्धाओं से दुख होता था, उनका यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। उसका ज्ञान होने से दुख दूर होता है ऐसा नहीं कह करके पंडित जी साहब ने बहुत उपयोग से वो बात लिखी है। यथार्थ ज्ञान होने से दुख दूर होता है। ज्ञान दो तरह का होता है, यथार्थ भी होता है और यथार्थ भी होता है। धोखा तो वहां हो जाता है कि यथार्थ होने पर भी आगम अनुकूल हमारी समझ दिखने में आती है, तो धोखा हो जाता है कि हमारा ज्ञान सही है, लेकिन ये बात ज्ञान सही नहीं भी हो सकता है, चाहे आगम के विपरीत समझ नहीं हो तो भी। इन स्थिति की कुछ होता है यहाँ पर, यथार्थ माने क्या और अयथार्थ माने क्या? तुम ये कहेंगे कि आगम से विपरीत तो हमारी हमारी समझ में, जैसा आगम कहता है हम जानते हैं, सम्मत करते हैं न्याय से, युक्ति से, अनुमान से, तर्क से, परस्पर से, ऐसा नहीं चलता। यथार्थ ज्ञान सुख का उत्पादक है, पुरुषार्थ का उत्पादक है, रुचि का उत्पादक है, जबकि अयथार्थ ज्ञान आगम अनुकूल होने पर भी रुचि बल पुरुषार्थ और सुख का उत्पादक नहीं है, यही इसका लक्षण है। यथार्थता और यथार्थता का स्वरूप क्या, प्रश्न वो है। इतना धोखा खाते हैं जो लोग बहुत शास्त्र पढ़ करके भी धोखा खाते हैं, तो यहाँ पर धोखा खाते हैं कि बहुत से शास्त्र से मिलान कर लेते हैं अपनी समझ से, पत्थर लगाते हैं, उसकी क्रिया मानते हैं, विचार करते हैं सब पहलों से, लगता है कि ठीक है हमारी समझ ठीक है, ज्ञान हो गया है सार नहीं, ऐसे धोखे में रहना नहीं चाहिए।
आत्मा से जो मिलान किया
तो इनका जो स्वभाव है, इनका जो कार्य कारण है, उससे तो मिलन होना चाहिए। तो सही कारण से सही कार्य होता ही है, हमें बिना रहता नहीं। तो हमारा प्रयोजन तो सुख का है, क्यों करते हैं माथा पति से, क्यों इतने इतना तत्वज्ञान में माथा डालते हैं, क्यों? कि हमें सुख चाहिए, पर ज्ञान मिला और सुख हुआ नहीं, पर मान लेते कि ज्ञान हुआ। ये बात यथार्थता के प्रकरण में चलने वाली नहीं है, अयथार्थता के प्रकरण में चल जाती है, लेकिन यथार्थता के प्रकरण में वो बात चलने वाली नहीं है। यथार्थ ज्ञान गुण का उत्पादक है, सुख का उत्पादक है, आत्मरुचि का उत्पादक है, आत्म प्रसाद का भी उत्पादक है, पर यथार्थ ज्ञान ज्ञान हुआ है ऐसा शास्त्राभिनिवेश का उत्पादक हो जाता है, जो आगे जाकर के अवगुण का कारण होता है, ऐसा बनता है। इसलिए यहां सतर्क होना है। जो हम लोग शास्त्र अध्ययन करते हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उनको यहां जागृत रहना है कि ये हुआ कि नहीं हुआ, उन्हें गड़बड़ हो ही जाएगी, वो बिना रहेगी। और जो शास्त्र के अभ्यास से वो जानकारी का ज्ञान हुआ समझ आई ऐसा लगता है, तो एक सबसे बड़ा प्रतिबंध ये हो जाता है कि मुझे बात समझ में आ गई है, मैं समझा हूं, ये मैं समझा हूं ये परिणाम सतपुरुष की पहचान करने देगा नहीं। सबसे बड़ा नुकसान होगा तो ये होगा, क्यों? कि जो बात सतपुरुष करता है, ज्ञानी करता है, ऐसी बात अज्ञानी नहीं करता है। बात रही है पहचान की, क्या अंतर है, तो उसका आशय पकड़ने में नहीं आता है। ज्ञानी के वाणी में जो आशय होता है उसी शब्दों में, अगर कोई अज्ञानी बोलता है तो उसमें आशय होता नहीं है। आशय पकड़ने की जो चीज है उसमें जो ज्ञान की सूक्ष्मता है वो तो नहीं आती है। उसमें ज्ञान की निर्मलता होगे तो यथार्थता आए, तो समझ में यथार्थता होगी तो पकड़ में आएगा। या तो एक आत्मज्ञान का लक्ष्य होगा, तो
ज्ञान की पर्याय एक कार्य है सुनने का, ज्ञान की पर्याय का उसकी पर्याय भी एक ही कार्य है सुनने का,
ज्ञान के पर्याय का और
सुख की पर्याय,
सुख की पर्याय का हाँ एक ही कार्य है। उधारी का धंधा थोड़ा है, ज्ञान पहले करे सुख अगले भाव में मिले, अभी इस भाव में तो ज्ञान करे अगले भाव में उसका सुख मिलेगा, ऐसा थोड़ी बात है।
पर्याय की स्वतंत्रता है उसमें
नहीं, उसका विज्ञान है, साइंस है आपस में, एक दूसरे का कारण कार्य का विज्ञान है, वो स्वतंत्रता नहीं है, दोनों स्वतंत्र है। दोनों स्वतंत्र होने के बावजूद भी कारण कार्य अवश्य नित्य नैमित्तिक संबंध से होता है। जो उपादान को मानता है वही सही निमित्त नैमित्तिक संबंध को मानता है, जो सही निमित्त नैमित्तिक संबंध को मानता है वही उपादान को जानता है, दूसरा जानता नहीं है, दोनों सापेक्ष है।